नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सर्वसम्मत नेता चुने गए। एनडीए की नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों ने एनडीए को उसके प्रदर्शन के कारण जनादेश दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे का प्रस्ताव नामंजूर किया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। ओडिशा में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित और खेलों में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान तथा ऑल इंडिया अन्ना डीएमके नेता इडप्पडी के पलनीसामी ने अनुमोदन किया। प्रस्ताव का समर्थन करने वाले एनडीए के दूसरे नेताओं में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेफ्यू रियो तथा अन्य शामिल हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से भाजपा संसदीय दल का नेता चुना गया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन राजनाथ सिंह ने किया। अमित शाह ने बताया कि लोकसभा के 553 सदस्यों ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है। संसद के केंद्रीय कक्ष में एनडीए के नेताओं को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल और एनडीए का नेता चुने जाने पर आभार प्रकट किया।
भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से मुझे चुना। एनडीए के भी सभी सांसदों ने और एनडीए के सभी दलों ने भी इसका समर्थन किया और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता ने भाजपा के कार्यों को देखकर इस सरकार को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र कड़ी मेहनत और ईमानदारी को पुरस्कृत करता है और ये इस देश की ताकत है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारी जनादेश जिम्मेदारी बढ़ा देता है और एनडीए आज से एक नई यात्रा पर निकला है। उन्होंने कहा कि एनर्जी और सिनर्जी एनडीए की दो मुख्य विशेषताएं हैं तथा इसमें शामिल सभी पार्टियों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा।
2019 का चुनाव एक प्रकार से सामाजिक एकता का आंदोलन बन गया। समभाव भी मम भाव भी, ये समभाव और मम भाव का वातावरण, ये समता और ममता का वातावरण, इसने इस चुनाव को एक नई ऊंचाई दी है और इसलिए शायद भारत के लोकतांत्रिक जीवन में, चुनावी परंपरा में देश की जनता ने एक नए युग का आरंभ किया है और हम सब उसके साक्षी हैं।
नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में ये पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला सांसद चुनकर आई हैं और ये महिला सशक्तिकरण से ही संभव हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा हम लोगों को किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना होगा जिनकी पूर्व में अनदेखी की गई है और उनका उपयोग चुनाव में केवल वोट बैंक के लिए हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके से गरीबों को ठगा गया, उसी तरह अल्पसंख्यकों को भी ठगा गया। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जाए। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का एक नया नारा दिया।
दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसे भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक काल्पनिक भय और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं कि हमें इस छल को भी छेद करना है।
नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने सत्ता के पक्ष में मतदान किया है और इसका परिणाम सकारात्मक जनादेश के रूप में सामने आया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये ऐतिहासिक जनादेश है और राष्ट्र ने अपने सभी भागों से एनडीए और नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता नरेंद्र मोदी की संकल्पना में विश्वास करती है और पहली बार इस चुनाव में जातिवाद, वंशवाद और तुष्टिकरण मुद्दा हावी नहीं हो सका। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए ने पिछले 5 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ राष्ट्र की सेवा की।
मोदी जी ने 5 साल के अंदर नए भारत की एक कल्पना लोगों के सामने रखी है और 5 साल के अंदर अथक परिश्रम में सबको साथ में लेकर नए भारत की नींव डालने का काम किया है।
नरेंद्र मोदी आज एनडीए सरकार के गठन के लिए अपना दावा पेश करेंगे। वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। इससे पहले एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या?
प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा?
लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना।
आधार अपडेट?
हाँ।
और कैसे करवाऊँ?
किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है।
ठीक है फिर।
जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ।
मेरा आधार, मेरी पहचान।
ये आकाशवाणी है। कांग्रेस कार्य समिति ने हाल के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश को नामंजूर कर दिया। आज नई दिल्ली में कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राहुल गांधी ने त्यागपत्र देने की पेशकश की थी, लेकिन कार्य समिति ने सर्वसम्मति से उसे अस्वीकार कर दिया। कार्य समिति ने राहुल गांधी से सैद्धांतिक लड़ाई लड़ने और देश के युवाओं तथा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पार्टी का नेतृत्व और मार्गदर्शन जारी रखने का अनुरोध किया। एक प्रस्ताव में कार्य समिति ने देश की जनता के जनादेश को स्वीकार किया और कहा कि कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस जगनमोहन रेड्डी को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वाईएसआर कांग्रेस के विधायकों द्वारा सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद जगनमोहन रेड्डी ने पार्टी नेताओं के साथ आज हैदराबाद में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। जगनमोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए 30 मई को विजयवाड़ा में समारोह आयोजित किया जाएगा। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके ने लोकसभा में टीआर बालू को अपना नेता मनोनीत किया है। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन की अध्यक्षता में आज चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक हुई, जिसमें कणिमोई को उपनेता बनाया गया। तृणमूल कांग्रेस ने सुदीप बंदोपाध्याय को दोबारा संसदीय दल का नेता चुना है। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव में पार्टी की हार की समीक्षा के लिए आज बुलाई गई बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार के सकारात्मक कार्यों में सहयोग करेगी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेगी। चुनाव में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की ममता बनर्जी के प्रस्ताव को पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव बाद हुई हिंसा की घटनाओं पर चिंता जताई है। राज्यपाल ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सब लोग मिलकर प्रदेश और देश की खुशहाली तथा तरक्की के लिए काम करें। राज्य के कई जिलों से सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के समर्थकों के बीच झड़पें होने की खबर है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में निर्णायक जीत पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक और कार्यकाल के लिए राज्य में सरकार बनाने के लिए तैयार है। 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी को 41 सीटें मिली हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नवी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को समाप्त होगा और 10वीं विधानसभा का गठन उस तारीख से पहले किया जाना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू कल अपनी कैबिनेट की बैठक बुला सकता है और राज्यपाल डॉ बीडी मिश्रा को अपना इस्तीफा सौंपने की संभावना है। जनता दल यूनाइटेड सदन में अपने 60 सदस्यों के साथ दूसरे सबसे बड़े पार्टी है। जेडीयू की विधानमंडल दल की बैठक आज ईटानगर में हुई, जिसमें तेची कासो को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की सूची सौंपी। राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने पर उन सभी को बधाई दी। राष्ट्रपति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग, उसके अधिकारियों, अन्य कर्मचारियों, पुलिस तथा सुरक्षा कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर करोड़ों मतदाताओं की भी सराहना की। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। समाचार संध्या में आपका स्वागत है। ओडिशा के पश्चिमी जिलों में पिछले दो सप्ताह से चल रही लू से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पश्चिमी ओडिशा के अधिकांश शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। तितलागढ़ और बोलांगीर में तापमान 46 डिग्री से अधिक, संबलपुर और झारसुगड़ा में 45 डिग्री से अधिक है। राज्य के 13 स्थानों पर आज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूरत में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से छात्रों की मौत के मामले में गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव से विस्तृत जानकारी मांगी है। भवन के मालिक और अन्य के विरुद्ध की गई कार्रवाई की भी रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने कहा कि कोई सुरक्षित रास्ता न होने के कारण पीड़ित आपात स्थिति में बाहर नहीं निकल सके। इस बीच अग्निकांड में घायलों में से दो की मृत्यु के बाद मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। इस सिलसिले में कोचिंग सेंटर के मालिक भार्गव भूटानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रूपये की सहायता की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन पर भारत बांग्लादेश सीमा के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल से सटे सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर स्थायी ठिकाने बनाने के मंसूबे के बारे में अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन भारतीय प्रायद्वीप में अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए ठिकाना बनाने का मंसूबा पाले हुए हैं। भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तुर्की के अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में कांस्य पदक जीत लिया है। रजत चौहान, अभिषेक वर्मा और अमन सैनी की तिकड़ी ने कांस्य पदक मुकाबले में रूस को 230 के मुकाबले 235 अंक से हराया। जर्मनी के म्यूनिख में कल से विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता शुरू होगी। प्रमुख भारतीय निशानेबाजों में अपूर्वी चंदेला, अंजुम मौदगिल और इला वेनिल वलारियान शामिल हैं। इस विश्व कप से टोक्यो ओलंपिक के लिए 17 कोटा स्थान निर्धारित हैं। भारत ने प्रतियोगिता के लिए 35 सदस्यीय दल भेजा है जो 10 स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। सिरिल रामाफोसा ने आज दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रामाफोसा को 6ठे आम चुनाव के बाद आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पिछले वर्ष फरवरी में इस्तीफा दे दिया था। रामाफोसा के कल मंत्रिमंडल की घोषणा करने की संभावना है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टेरिजा मे के इस्तीफे की घोषणा के बाद कंजर्वेटिव पार्टी का नेता बनने की दौड़ शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री ने ब्रेग्जिट समझौते के मुद्दे पर अगले महीने इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के मुद्दे पर अपने मंत्रियों के साथ संशोधित रणनीति बनाने में नाकाम रहीं। पार्टी का नया नेता जुलाई के अंत तक चुने जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की थी कि वे 7 जून को पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन नए नेता के चुने जाने तक प्रधानमंत्री पद पर बनी रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सर्वसम्मत नेता चुने गए। नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर उन्होंने दावा पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों ने एनडीए को उसके प्रदर्शन के कारण जनादेश दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे का प्रस्ताव नामंजूर किया। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। ओडिशा में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। खेलों में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।